بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منش بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واستوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں، اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir, जबकि हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib हिंदी। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0098-9035054-92। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 0098-9035054-92। श्रोताओ, आज गुरुवार है, आजर की 13, रबीउ सानी की 17 और दिसंबर की 3 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, फिर हम आपको सुनवाएंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम, उसके बाद बारी होगी साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात की, और हमारी आज की सभा के अंत में पेश किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि जनता ने दुश्मन के आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक युद्ध के मुकाबले में अच्छी तरह प्रतिरोध किया है। विदेश मंत्री का कहना है कि हमने परमाणु समझौते में जो कुछ हासिल किया है उसके बारे में कभी भी दोबारा वार्ता नहीं करेंगे। भारत में किसान संगठनों और सरकार के बीच गुरुवार को हुई वार्ता में किसान नेताओं ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फिलिस्तीन व सीरिया के गोलान के समर्थन में 5 प्रस्ताव पारित किए हैं। और अब आप हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रूहानी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के भरपूर आर्थिक युद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ईरानी जनता ने दुश्मन के आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक युद्ध के मुकाबले में अच्छी तरह प्रतिरोध किया है। डॉक्टर हसन रूहानी ने गुरुवार को देश में बिजली आपूर्ति के मैदान में 25 परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में कहा कि न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया में कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ईरानी जनता इन कठिन हालात और अत्यंत कड़े आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक युद्धों में अच्छी तरह प्रतिरोध करके देश का संचालन कर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सभी दबावों के बावजूद लोगों को कभी भी पानी, बिजली या गैस की आपूर्ति रुकने, पेट्रोल व डीजल की कमी या फिर खाद्यान्नों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिबंधों के दिनों में ही स्वास्थ्य, उपचार, सड़क, रेलवे और कई अन्य क्षेत्रों में बड़ी अहम प्रगतियां हुई। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि पश्चिम के सबसे विकसित देशों को भी कोरोना के फैलाव के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहा कि अत्यंत कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान कोरोना से संघर्ष के मैदान में बड़ा सफल रहा है। उन्होंने इसी तरह हर महीने 35 गांवों के देश के बिजली नेटवर्क से जुड़ने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बिजली का कम इस्तेमाल करने वाली देश की 30% जनसंख्या को बिजली निःशुल्क मिलेगी और जल्द ही पानी व गैस के बारे में भी इसी तरह की योजना लागू की जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने परमाणु समझौते में जो कुछ हासिल किया है उसके बारे में
कभी भी दोबारा वार्ता नहीं करेंगे। मोहम्मद जवाद जरीफ ने गुरुवार को मेडिटेरेनियन डायलॉग की बैठक में वीडियो लिंक के जरिए भाग लिया। उन्होंने इस वार्ता में परमाणु समझौते के खिलाफ अमरीकी सरकार की कार्रवाइयों के बारे में कहा कि वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है और ट्रंप की सरकार एक उद्दंडी सरकार है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को परमाणु समझौते का उल्लंघन बंद करना चाहिए और हमने परमाणु समझौते में जो कुछ हासिल किया है उसके बारे में दोबारा वार्ता नहीं करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमरीकी व यूरोप वाले परमाणु समझौते का पालन करें तो हम भी समझौते के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। विदेश मंत्री जरीफ ने इसी तरह यमन में सऊदी अरब और उसके अरब व पश्चिमी घटकों के अपराधों के बारे में कहा कि पश्चिम यमन में युद्ध का समर्थन करके फारस की खाड़ी के तटवर्ती अरब देशों को हथियार बेच रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम वालों ने सऊदी पत्रकार जमाल खाशुकजी की हत्या का समर्थन किया और वे इसराइली आतंकवाद का भी समर्थन कर रहे हैं। विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक शहीद डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या की आतंकी कार्रवाई के बारे में कहा कि डॉक्टर फखरीजादे की हत्या एक अंतर्राष्ट्रीय हमला है और हमें अब भी ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी की ओर से इस अपराध की निंदा का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने गुरुवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 14,000 नए मामले सामने आए, जबकि 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,922 नए मामले सामने आए, जिनमें से 1,921 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10,03,494 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 6,99,315 लोग कोरोना से मुक्त भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में 358 लोगों की कोरोना के घातक वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बताया कि अब देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 49,348 हो गई है। इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 6.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 15 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। अमेरिका कोरोना के संक्रमितों और इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। अमरीका में कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 1,41,00,000 से ज्यादा है, जबकि कोविड-19 से मरने वाले अमरीकी नागरिकों की संख्या कम से कम 2,80,000 है। ईरान के संसद सभापति ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को समाप्त करने के रणनीतिक कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। संसद की मुख्य समिति के सदस्य अहमद अमीराबादी फराहानी ने बताया कि संसद सभापति मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने बुधवार की रात को संविधान निरीक्षक परिषद द्वारा इस कानून की पुष्टि के बाद राष्ट्रपति रूहानी को एक पत्र लिखकर इस कानून को लागू करने के लिए उनके पास भेज दिया है। याद रहे कि ईरानी संसद ने परमाणु वैज्ञानिक शहीद मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद मंगलवार को इस कानून को पारित किया था, जिसकी संविधान निरीक्षक परिषद ने भी पुष्टि कर दी है, इसीलिए वो लागू किए जाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इस कानून के अनुसार ईरानी सरकार का कर्तव्य है कि अगर परमाणु समझौते के अन्य पक्षों ने अपने वचनों का पालन नहीं किया तो इस कानून के पारित होने के 2 महीने बाद वो पूरक प्रोटोकॉल के पालन को बंद कर दे। इसी तरह कानून में कहा गया है कि अगर अन्य पक्ष अर्थात फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन और जर्मनी अपने वचनों का पालन करते हैं और ईरान पर लगे प्रतिबंध समाप्त होते हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट संसद में पेश की जाए। ये समाचार आपकी सेवा में रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में किसान आंदोलन पर किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत जारी है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं और पंजाब समेत देश के कई राज्यों के किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकारों के बीच बैठक को 8 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ बैठक में मांग रखी है कि सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाए और नए कृषि कानूनों को खत्म करे। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के दौरान किसान नेताओं को जवाब दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को छुआ नहीं जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है और वे लगातार 8 दिन से नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फिलिस्तीन व सीरिया के गोलान के समर्थन में 5 प्रस्ताव पारित किए हैं। बुधवार की रात होने वाली बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फिलिस्तीन व सीरिया के गोलान के समर्थन में पेश किए गए 5 प्रस्तावों को पारित कर दिया। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसराइल के अतिग्रहणकारी कदम का खुलकर विरोध किया है। पहले प्रस्ताव में, जो सीरिया के अवैध अधिकृत क्षेत्र गोलान हाइट्स के बारे में था, बल दिया गया है कि गोलान पर सन 1967 से इसराइल के गैर कानूनी कब्जे को खत्म किया जाए। सीरिया के उपविदेश मंत्री ने सीरिया के अवैध अधिकृत गोलान इलाके के बारे में अमरीकी सरकार की कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वह इस बारे में अपने प्रस्तावों को लागू करे। बशार जाफरी ने बुधवार को कहा कि सीरिया संयुक्त राष्ट्र संघ से यह मांग करता है कि वह सीरिया के इलाकों पर ज़ायोनियों के गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने के लिए अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए तत्काल और आवश्यक कदम उठाए। बशार जाफरी ने इस बात पर बल दिया कि सीरिया अपने इलाकों को वापस लेने के लिए हर उस साधन को इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कानूनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उनके करीबी समर्थक भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद उनका कहना है कि सन 2024 में वे फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि गुजरे हुए 4 साल बहुत शानदार थे, हमारी कोशिश होगी कि अभी अन्य 4 साल पूरा करें, वरना 4 साल बाद नए सिरे से अपनी मुलाकात होगी। ट्रंप जब यह भाषण दे रहे थे तो इसे कवर करने के लिए मीडिया नहीं था, बल्कि केवल रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता उनके पास थे, मगर बाद में ये वीडियो मीडिया तक पहुंचाया गया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवानका ट्रंप को आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में जांचकर्ताओं के सामने पेश होना पड़ा है। इवानका पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए एकत्रित की गई राशि में धांधली की है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदालत के दस्तावेजों के अनुसार कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल कार्ल रासिन ने यह शिकायत की है कि ट्रंप की कंपनियों ने चंदे की रकम ट्रंप के परिवार के लोगों को दी जिसे उन्होंने व्यक्तिगत कामों के लिए प्रयोग किया। 58 प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी कमेटी नाम की एनजीओ ने कहा है कि सेरेमनी के अवसर पर ट्रंप के परिवार ने राजधानी वाशिंगटन में ट्रंप होटल में जश्न के लिए बहुत भारी कीमत चुकाकर हॉल बुक किया। यह रकम ट्रंप की बेटी इवानका और बेटों JR और एरिक को मिली। अमेरिका में एक अध्ययन के अनुसार इस देश में चीन से पहले ही कोरोना फैल चुका था। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के अनुसार दिसंबर सन 2019 में अमेरिकी नागरिकों के खून के नमूनों की जांच से पता चलता है कि कुछ लोग कोविड-19 वायरस के फैलाव की घोषणा से पहले ही इस वायरस की लपेट में आ चुके थे। चीन के अधिकारियों ने पहली बार 31 दिसंबर सन 2019 को बताया था कि वुहान में फेफड़े के रहस्यमय संक्रमण का पता चला है, फिर बाद में पता चला कि इस बीमारी की वजह कोरोना वायरस है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ट्रंप द्वारा अभय दान देने की प्रक्रिया, फिलिस्तीनियों के एकता दिवस और भारत में किसान प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। आइए शुरू करते हैं फिलिस्तीन के एकजुटता दिवस के विषय से। फिलिस्तीनियों का कहना है कि कुछ अरब देशों द्वारा ज़ायोनी शासन के साथ अपने संबंध सामान्य करने के कारण फिलिस्तीनी राष्ट्र पर नई तरह के अत्याचार होने लगे हैं। इससे पहले भी फिलिस्तीनी अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कह चुके हैं। विस्तार से बता रहे हैं साथी मोहम्मद मेहदी।
फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिवस वो दिन है जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्र संघ ने पंजीकृत किया है, लेकिन राष्ट्र संघ ने ही सन 1947 में एक बयान जारी करके फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति को तीन भागों में यहूदियों और अरबों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बांट दिया। इस प्रकार से राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के भविष्य निर्धारण के अधिकार को अनदेखा कर दिया। हाल ही में कुछ अरब देशों द्वारा ज़ायोनी शासन के साथ अपने संबंध सामान्य करने के कारण फिलिस्तीनी राष्ट्र पर एक नया अत्याचार हुआ है। हम विश्ववासियों से चाहते हैं कि वे फिलिस्तीनी राष्ट्र के साथ खड़े हों ताकि इस ऐतिहासिक अत्याचार को समाप्त किया जाए। अतिक्रमणकारी शासन के हाथ फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए हैं। इस अवसर पर मैं विश्व के सारे स्वतंत्रता प्रेमियों का सम्मान करता हूं, जिनमें अरब और इस्लामी जगत भी शामिल है। वर्तमान समय में विश्व समुदाय से मांग की जा रही है कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनियों के अत्याचारों को रुकवाया जाए। फिलिस्तीनी गुटों ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता वास्तव में झूठ के मुकाबले में सच के साथ एकजुटता है, विशेषकर इसलिए कि अत्याचारियों ने इस क्षेत्र में अपने अधिग्रहण को साबित करने के लिए सारी पुरानी परंपराओं को परिवर्तित कर दिया है। हम विश्व के सभी स्वतंत्रता प्रेमियों से मांग करते हैं कि वे ज़ायोनियों के विरुद्ध प्रतिबंध के हथियार का प्रयोग करें। अवैध ज़ायोनी शासन के साथ संबंध बहाल करने से क्षेत्रीय राष्ट्रों का किसी भी प्रकार का भला नहीं होगा, बल्कि ये काम फिलिस्तीन और मस्जिदुल अक्सा को एक दूसरे से अलग करने के अर्थ में है। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिवस कोई सामान्य दिन नहीं है जो आकर गुजर जाए, बल्कि ये वो दिन है जब फिलिस्तीनी अपने अधिकार की मांग करते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता प्रेमी हैं जो प्रतिरोध का समर्थन कर रहे हैं। इब्राहिम अहमद, IRIB, गजा, फिलिस्तीन।
जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप को अब पूरा विश्वास हो चुका है कि डेमोक्रेट्स उनके निकटवर्तियों पर ताक लगाए बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए अभयदान का रास्ता अपनाया है। इस रास्ते से ट्रंप अपने परिजनों को भविष्य में सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं रविश जैदी।
डोनाल्ड ट्रंप अब अपने परिवार के सदस्यों और अपने निजी वकील जुलियानी के लिए सरकारी अभयदान का प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको विश्वास हो चुका है कि व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स उनके निकटवर्तियों पर ताक लगाए बैठे हैं। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फेलिन या उन सैनिकों के लिए अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए माफी का इस्तेमाल किया था जिन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए थे। लेकिन अब क्या ट्रंप स्वयं को माफ कर पाएंगे? टीवी कार्यक्रम बनाने वाले एक प्रोफेसर अलुमारी कहते हैं कि बहरहाल अब ट्रंप को कड़े दिनों का सामना करना ही होगा, ठीक उस समय से जब बाइडन पद की शपथ लेंगे।
Against all enemies.
दूसरों को माफ करने का ट्रंप का ये विशेष अधिकार उनके हाथ से जा चुका होगा। संभावित रूप से उनको कई मामलों का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर इसलिए भी कि वे 2024 का लड़ने के अभी से इच्छुक हैं। हालांकि इस बारे में संविधान की व्याख्या थोड़ी भिन्न है। कुछ कहते हैं कि अगर वे स्वयं को माफ करें तो भी इसमें फेडरल सरकार के केस ही आएंगे, जबकि इससे राज्यों में ट्रंप के केसों को माफी नहीं मिल पाएगी। कुछ दूसरों का ये कहना है कि कोई भी इंसान अपने ही केस का जज नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। न्यूयॉर्क से कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ بھارت کی کیندر سرکار اور آندولن رت کسانوں کے بیچ وارتا کا دور جاری ہے۔ وارتا کا کرم جاری رہنے کے باوجود دونوں پکشوں کے بیچ گتیرودھ سماپت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
کسانوں کی مانگیں لکھت روپ میں کیندر سرکار کو پیش کیے جانے کے بعد کیندر سرکار اور کسانوں کے بیچ دوسرے چرن کی وارتا آج دلی کے وگیان بھون میں جاری ہے اور سرکار اور کسانوں کے کڑے رخ کے درشٹیگت گتیرودھ کے سماپت ہونے کی سمبھاونائیں پربل دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ سوتروں کے انوسار سرکار ایم ایس پی پر لکھت آشواسن دے سکتی ہے، لیکن کسان ایم ایس پی کو لے کر قانون بنانے کی مانگ کر رہے ہیں جس میں نردھارت نیونتم سمرتھن مولیہ سے کم پر اپج خریدنے پر کم سے کم 2 سال جیل کی سزا کا پراودھان ہو۔ ادھر دلی سے ملنے والی اتر پردیش اور ہریانہ کی سیماؤں پر آج 8ویں دن بھی کسان شانتی پورن روپ سے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور کیندر سرکار سے نئے کرشی قانون کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں۔
نہیں لگتا کہ ان کی نیت صاف ہے، اور ہمارے آدرنیہ راکیش ٹکیت اور ہمارے پنجاب کے تمام کسان نیتا وارتا کے لیے گئے ہیں۔ وارتا کچھ نہیں کرنا، جو بل ہے اسے سماپت کرنا ہے اور ہمیں ایم ایس پی کا ریٹ چاہیے۔
دلی چلو آندولن کے تحت مارچ کرنے والے کسانوں کو دلی میں پرویش ہونے کے 4 بندوؤں پر بیریکیڈ لگا کر اور سرکشا بلوں کو بھاری سنکھیا میں تعینات کر کے روک دیا گیا ہے، جہاں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ دلی میں سطح پر بیٹھی ہوئی سرکار کو اپنی مانگیں منوانے کے لیے انہوں نے دلی کا رخ کیا ہے۔
دیس کا بوٹ لے کر کے لوگ دلی میں آ کے بیٹھ گئے چھپ کر کے، کسان کو کھوجے ہوئے سرکار نہیں مل رہی، سانسد ودھائک نہیں مل رہے، تو ہم اور کہیں کیوں جائیں، ہم دلی نہ آئیں گے نا۔
غازی پور سیما پر کسان دھرنے پر بیٹھے سرکار اور کسانوں کی وارتا کے نشکرش کی پرتیکشا کر رہے ہیں۔ اس سردی میں دھرنے پر ڈٹے کسان نیونتم سمرتھن مولیہ کو لے کر قانون بنانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے لیے لنگر کا بھی پراودھان کیا گیا ہے۔ کسانوں نے کل سنگھو سیما پر ایک پریس وارتا میں سرکار سے تینوں ویوادت کرشی قانونوں کو نرست کرنے کے لیے سنسد کا وشیش ستر بلانے کی مانگ کی تھی۔ سرکار اکت قانونوں کو واپس لینے کی مانگ ٹھکرا چکی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کی چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے لکھت آشواسن دیا جا سکتا ہے۔ ادھر پنجاب کے پورو مکھیہ منتری اور بھاجپا کی پورو سہیوگی شرومنی اکالی دل کے نیتا پرکاش سنگھ بادل نے کسانوں کے مدے کو لے کر اپنا پدم وبھوشن اوارڈ واپس کر دیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ متروں، ہمارے کاریکرموں کو آپ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ अपनी प्रतिक्रियाओं को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो मित्रों, राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको विकलांग दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम सुनवाने जा रहे हैं, किंतु पहले सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम का विषय है आम भारतीयों की समस्याओं के मध्य मीडिया की भूमिका। आशा करते हैं हमेशा की तरह आज का भी हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। इस देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे भाषाएं, धर्म, संस्कृति और सबसे मुख्य इस देश की गंगा जमुना संस्कृति है। इसके अलावा इस देश में आम भारतीयों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको कुछ सरकारें हल करने का प्रयास करती हैं तो कुछ सरकारें उन्हें भुला देती हैं। लेकिन भारत का मीडिया इस देश की सरकार और जनता के मध्य एक ऐसा माध्यम माना जाता रहा है जो आम आदमी की समस्याओं पर नजर रखता था, और साथ ही नेताओं को उसके समाधान के लिए समाचार पत्रों और चैनलों के जरिए समय समय पर याद दिलाता रहता था। लेकिन इधर कुछ वर्षों में जनता नेता और मीडिया की तिगड़ी में से जनता धीरे धीरे गायब होती जा रही है, जबकि नेता और मीडिया बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बीच मीडिया अपना ध्यान ऐसे विषयों की ओर ज्यादा केंद्रित कर रहा है जो आम जनता की समस्याओं को कम करने के बजाय और ज्यादा कर रहा है। आजकल लव जिहाद जैसे शब्द राष्ट्रीय समाचार पत्रों और चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज का सबसे ज्यादा हिस्सा बनते जा रहे हैं।
लव जिहाद के मामले बढ़ने और उस पर उठ रहे विरोध के बाद
नाउ बिग ब्रेकिंग कमिंग इन, लव जिहाद चार्ज।
लव जिहाद पर आज बड़ा फैसला होने वाला है।
कोरोना महामारी से पहले से ही जूझ रही भारतीय जनता अब किसानों के देशव्यापी आंदोलन ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भारतीय मीडिया से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जनता और सरकार के बीच संवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी और इस समस्या का समाधान निकालेगी। लेकिन भारत की मीडिया के लिए शायद अब ये विषय कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मीडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे को व्यापकता के साथ उठाया जा रहा है वो है कथित लव जिहाद का मुद्दा। कथित लव जिहाद के मुद्दे को इतने व्यापक स्तर पर उठाया जा रहा है कि जैसे कोई मुद्दा भारत में बचा ही नहीं है, जबकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि इससे समस्याएं और ज्यादा जटिल होंगी। हाँ, ये जरूर है कि इससे किसी संगठन और एक विशेष विचारधारा के लोगों को जरूर लाभ पहुंच रहा है। इस संबंध में भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं टीकाकार उर्मिलेश सिंह का कहना है कि भारतीय मीडिया गलत रिपोर्टिंग की वजह से अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। वो कहते हैं कि या तो मीडिया देश के मुख्य मुद्दों से हटकर किसी भड़काऊ मुद्दे को उठाता है या फिर कोई ऐसी खबर ब्रेक करता है कि जिसकी सत्यता की पुष्टि करना भी मुमकिन नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश सिंह कहते हैं कि
अपने देश के मीडिया मेनस्ट्रीम मीडिया में बड़ी जो कुछ कहानियां या बड़ी जो तस्वीरें, बड़े जो मामलात उभर कर सामने आए, एक जो प्रश्न इस महामारी के दरमियान दिखाई दे रहा है वो है लव जिहाद का। और ऐसा लगता है कि लव जिहाद जैसे एक इतना बड़ा मसला है जबकि जमीन पर वो कहीं नहीं दिखता, उसका कोई मतलब नहीं है सिवाय एक संगठन विशेष के लिए, एक विचारधारा विशेष के लिए, लेकिन उसको मीडिया इतनी तरजीह देता है कि उसके आगे जो इस इतने विशाल देश के जो न जाने कितने करोड़ों लोगों के कितने मामलात हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं जाती, कोई उनको महत्व नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अभी हाल में एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी। दिलचस्प घटना ये थी कि ये 19 नवंबर को अचानक पीटीआई जैसी एक बहुत भरोसेमंद एजेंसी, जिसके बारे में माना जाता है कि कोई भी पीटीआई की जो खबर है वो सरकारी संपुष्टि के बगैर, यानी सरकार द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा कंफर्म किए बगैर नहीं प्रसारित होती है। हम लोग जब रिपोर्टिंग में आए थे जर्नलिज्म में शुरू के दौर में, तो ये देखा जाता था कि भाई पीटीआई ने जो कहा है वो जरूर सरकारी वर्जन के साथ होगा, तो अगर रिपोर्टर ने सरकारी वर्जन नहीं दिया है तो लोग आमतौर पर पीटीआई की स्टोरीज को देखते जरूर थे, कई बार इस्तेमाल भी करते थे। तो हमारा ये कहना है कि पीटीआई अगर ये खबर देती है कि पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में, भारत सरकार की, भारत की सेना ने स्ट्राइक किया है, पिन पॉइंट स्ट्राइक, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक, और उन्होंने वहां जो आतंकी थे उनके लॉन्चिंग पैड खत्म कर दिए, नेस्तनाबूत कर दिए हैं, और ये खबर पीटीआई की, देश के सारे न्यूज चैनल जो इस तरह की खबरों के लिए तरसते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ही वो इस खबर को पाएंगे इस तरह की, वो कई दिन तक उसको लगातार चलाते रहेंगे, उसमें बल्कि जितना है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। खबर शाम को ब्रेक होती है और फिर सारे चैनल, खासकर हिंदी के, अंग्रेजी के कई चैनल इसको लगातार दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी ओर से बाकायदे विशेषज्ञों को बुलाकर उस पर एक्सपर्ट कमेंट लेना शुरू कर देते हैं। और ये कहानी कुछ ही मिनट के बाद इंडियन आर्मी के जब प्रकाश में आई, उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि वो तो विश्लेषण था। अरे भाई, विश्लेषण ब्रेकिंग न्यूज होता है क्या? किसे समझाया जा रहा है?
वहीं भारत के एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार एवं टीकाकार आशुतोष गुप्ता से जब पूछा गया कि देश एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर गिरती जीडीपी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध ने आम जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रखा है, इस बीच देश के किसान भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर आए हैं, तो ऐसे में भारतीय मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या मीडिया के लिए ये सही होगा कि वो इन अहम मुद्दों पर बात करने के बजाय कथित लव जिहाद जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान दें? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार एवं टीकाकार आशुतोष का कहना है कि
लव जिहाद दरअसल जमीन पे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में इसी साल 2020 में देश की जो का गृह मंत्रालय है, जिसके मंत्री देश के सबसे ताकतवर नेता मोदी के बाद नंबर टू, उनका मंत्रालय संसद के अंदर इस बात की जानकारी देता है कि दरअसल लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है और किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने लव जिहाद का कोई केस अभी तक नहीं पाया है। अब सवाल यह उठता है कि जब देश का गृह मंत्रालय इस बात को मानता है कि लव जिहाद के केस इस देश के अंदर नहीं मिले हैं अभी तक, वैसी स्थिति में लव जिहाद को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? इसके दो बड़े कारण नजर आते हैं। पहला कारण तो यह नजर आता है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है उसके मूल में है। लव जिहाद का मतलब क्या हुआ? लव जिहाद का अर्थ है मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनका धर्मांतरण करके अपने धर्म में उसको मिला लेते हैं। तो एक तरीके का एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी या संघ को लगता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में 2005 के बाद से लव जिहाद के जितने भी केसेस किए गए हैं, लगभग लगभग सब में ये एक झूठ और अफवाह से ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि फिर टीवी चैनल्स पर ये इतनी ज्यादा कवरेज इसको क्यों मिलती है? तो एक तो बहुत स्पष्ट कारण है, सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर जो टेलीविजन मीडिया है वो कहीं ना कहीं आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा से एक तरीके से अलाइंड हो गया है और वो इस बात को लेकर कन्विंस्ड भी है कि मोदी और आरएसएस जो है वही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है जिसकी वजह से ऐसी खबरों को तूल दिया जाता है। दूसरा, इस आरोप में काफी दम है कि ऐसे समय में जबकि महामारी जैसे मुद्दे हैं, कोरोना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, भारत की सीमा पर जो है वो चीन के का अतिक्रमण एक सच्चाई के तौर पर सामने नजर आता है, भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% नेगेटिव ग्रोथ में है, साथ ही साथ अभी भी उससे उभरने के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अगले साल भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नजर आएगी, तो वैसे में यह जरूरी है कि कोरोना पर बहस ना हो, यह जरूरी है कि चीन के अतिक्रमण पर बहस ना हो, यह जरूरी है कि बेरोजगारी पर कोई बहस ना हो, यह जरूरी है कि अर्थव्यवस्था जो गिरती जा रही है उस पर कोई बहस ना हो, तो लव जिहाद जैसे मुद्दे ये मीडिया के की सुर्खियों में रहेंगे तो लोगों का ध्यान इन सब चीजों से हटता रहेगा।
वहीं जब भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं टीकाकार आशुतोष से यह पूछा गया कि आजकल भारतीय मीडिया बिना किसी सबूत के, बिना न्यूज कंफर्म किए कोई भी खबर चला देता है, तो क्या इससे उसकी विश्वसनीयता को खतरा नहीं है, और वे कौन लोग हैं जो लगातार मीडिया की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्होंने कहा कि
दरअसल भारत के जो टीवी चैनल्स में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े चेहरे, जो सेलिब्रिटी एंकर्स हैं, दरअसल वो पत्रकारिता से पूरी तरीके से जुदा हो चुके हैं। जो पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं कि किसी भी खबर पर आप आंख बूंद का यकीन मत करिए, खुद उसको आप वेरीफाई करिए, खुद उसको कन्फर्म रिकन्फर्म करिए। हम लोग तो सिखाया गया कि जब आप कोई खबर आप करते हैं तो कम से कम दो सोर्सेज से खबर कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद ही आप खबर को चलाएंगे। और यहां तक यह भी कहा जाता था कि अगर आप एजेंसीज के हवाले से कोई खबर आई है तो अगर आप चलाना भी चाहते हैं तो उसको एक बुनियादी तौर पर अगर कंफर्म कर लें तो बेहतर है, और अगर आप कंफर्म नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पीटीआई के हवाले से चलाएं या यूएनआई के हवाले से चलाएं, मतलब एजेंसीज का नाम दें ताकि दर्शकों को यह पता हो, पाठकों को यह पता हो कि यह खबर कौन, उसका सोर्स क्या है। लेकिन आज वो सारी स्थितियां एकदम निपट चुकी हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे टीआरपी की जो अंधी दौड़ है उसमें कौन सबसे ज्यादा कब से पहले एक्सप्लोसिव खबर चला के, उत्तेजक खबर को चला के लोगों की जो का जो आकर्षण है अपनी तरफ करके अपनी टीआरपी को बढ़ा सकता है। लेकिन उससे बड़ी समस्या मैं बताऊं, उससे बड़ी समस्या ये है कि इन टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उनमें से अगर इक्का दुक्का कोई अगर आप छोड़ दें तो ऐसे लोगों के पास है जिनका जर्नलिज्म से कोई सरोकार नहीं है, या जो जर्नलिज्म की जो बुनियादी उसूल है उसके उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो या तो मानते नहीं है या फिर उनका उससे कोई लेना देना नहीं रहा है, और ये न जाने क्यों और कैसे इतने बड़े पदों पर पहुंच गए।
मिलाकर ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर होने वाले शोर में इन सवालों को कोई नहीं सुनने वाला है। जैसे मीडिया का क्या काम होता है, एक पत्रकार का क्या दायित्व होता है, ये वो सवाल हैं जिसको पूछना अब अपराध हो गया है, क्योंकि आप टीवी पर बैठे तथा कथित पत्रकारों से इन सवालों को पूछेंगे तो वो आपका जवाब देने के बजाय आपको ही उल्टा पत्रकारिता सिखाने लगेंगे। आपको जवाब मिलेगा कि आप हमें न सिखाएं कि पत्रकारिता कैसे होती है, हम अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं, हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना बस। लेकिन हाँ, भारतीय मीडिया के पास हिंदू मुस्लिम डिबेट के लिए समय है, मंदिर मस्जिद के लिए वक्त है, लेकिन समय नहीं है तो केवल भारत की गरीब जनता की समस्याओं को उठाने का, आम लोगों की परेशानियों को बयान करने का, इस देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर प्रश्न पूछने का, बेरोजगारी से भटकते युवाओं की समस्याओं को सुनने का, और भारत जैसे महान देश की पवित्र संसद को अपवित्र करने वाले नेताओं की काली करतूतों को बयान करने का। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और मोहम्मद अली कुमी का सलाम स्वीकार कीजिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया है, इसलिए पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे जैसे 3 दिसंबर नज़दीक आने लगता है, वैसे वैसे कुछ लोगों और संस्थाओं की ओर से विकलांगों की समस्याओं की समीक्षा और उनको सहायता पहुंचाने के बारे में विचार विमर्श शुरू हो जाता है। सन 2020 के विकलांग दिवस के लिए राष्ट्रसंघ ने जो नारा दिया है वो है, कोरोना के बाद विकलांगों के लिए अच्छे संसार का निर्माण।
जानकारों का कहना है कि कोरोना के फैलाव की स्थिति में लोगों को विकलांगों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह लोगों का ऐसा गुट है जो कोरोना जैसी महामारी से जल्दी प्रभावित होता है। ऐसे में उनको विशेष समर्थन की जरूरत है। हालांकि विकलांगों को अपने जीवन में सदैव ही दूसरों के समर्थन की आवश्यकता होती है, किंतु कोरोना के काल में यह समर्थन कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हमें यह प्रण करना चाहिए कि हम विकलांगों की समस्याओं के समाधान में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।
विकलांगता के कारण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत से सामान्य काम करने में अक्षम रहता है। ऐसे लोगों में गूंगों, बहरों और शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक विकसित देशों की जनसंख्या में विकलांगों का प्रतिशत लगभग 10 था, जबकि विकासशील देशों में इनकी आबादी 12% बताई जाती है। ईरान में विकलांगों की संख्या देश की जनसंख्या में लगभग 3% है। कभी कभी मनुष्य उचित उपचार न मिलने के कारण भी पूरी जिंदगी विकलांग रह जाता है।
मुजदे नाम की एक लड़की बचपन में हड्डियों की एक विशेष प्रकार की बीमारी में ग्रस्त हो गई थी। यही बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और 14 वर्ष की होने पर मुजदे का सहारा बैसाखी बन गई। कुछ समय के बाद व्हीलचेयर मुजदे की जीवन साथी बन गई। यह बीमारी मुजदे का पीछा नहीं छोड़ रही। अब 38 साल की उम्र में उसकी चलने फिरने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है और उसको सांस लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुजदे की बीमारी हर दिन बढ़ रही है और उसकी शारीरिक क्षमता घटती जा रही है। अब कोरोना ने तो मुजदे की जीवन की परिस्थितियों को बहुत ही जटिल कर दिया है।
मुजदे ने अब यह सीख लिया है कि जीवन की कठिनाइयों में धैर्य के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोरोना के मुकाबले में भी वो बहुत ही धैर्यवान है। कोरोना से संक्रमित हो जाने से मुजदे को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, किंतु अब वो उससे उबर चुकी है। मुजदे विकलांगता को प्रगति के मार्ग की बाधा नहीं समझती। उनका मानना है कि दूसरों के समर्थन की स्थिति में विकलांग अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। मुजदे विकलांग होने के बावजूद उन लोगों के बारे में अधिक चिंता करती जिनका कोई सहारा नहीं है या जो आर्थिक दृष्टि से खराब स्थिति में जीवन गुजार रहे हैं।
वर्तमान समय में कोरोना या कोविड 19 की जो स्थिति है वह निश्चित रूप से विश्व पर अपने नकारात्मक प्रभाव डालेगी, जो सबसे अधिक समाज में विकलांगों को प्रभावित करेंगे। हालांकि विकलांग तो कोरोना के पहले से ही समाज के सबसे अधिक प्रभावित लोगों में से थे, अब कोरोना के बाद उनकी स्थिति अधिक दयनीय हो गई है, विशेषकर वे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक वीडियो संदेश जारी करके दुनिया की सरकारों से विकलांगों की सहायता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। अपने संदेश में वे कहते हैं कि समाज के अन्य लोगों की तुलना में विकलांगों का समूह कोविड 19 से जल्दी प्रभावित होने वाला समूह है। कोरोना संकट के दौर में उनके लिए समस्याएं अधिक हो चुकी हैं, इसलिए सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे विकलांगों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और जहां तक हो सके उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।
कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री को पत्र भेजकर कोरोना अन्य लोगों की तुलना में विकलांगों को अधिक प्रभावित कर रहा है, ऐसे में उनको विशेष समर्थन की आवश्यकता होती है। वाशिंगटन स्कूल और मेडिसिन विश्वविद्यालय में मानसिक विकलांगता केंद्र के प्रमुख डॉक्टर जॉन कैंस्टेटिनो का कहना है कि कोरोना के कारण समाज का विकलांग समुदाय अधिक अलग थलग हुआ है, जो चिंता की बात है। वेब तकनीक उनके लिए सही नहीं है, उनमें से अधिकांश को यह पता भी नहीं है कि वे किस प्रकार से कोरोना वायरस का मुकाबला करें।
विशेषज्ञों का कहना है कि विकलांगों को अपने जीवन में दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है और वे अकेले अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। असल की माता एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी 24 वर्षीय बेटी को ऑटिज्म है। अपनी बेटी की बीमारी के बारे में वे कहती हैं कि जब कोरोना फैला तो हमारे समाज में परिस्थितियां बदल गईं, लोगों के सामने एक नई स्थिति आई। मुझ जैसे परिवार जिनके यहाँ विकलांग बच्चे हैं उनकी स्थिति अधिक जटिल हो गई। इन परिस्थितियों में विकलांग बच्चों की देखभाल ज्यादा से ज्यादा की जानी चाहिए। अपनी बेटी की बीमारी के कारण मुझको उसे हफ्ते में कई बार अस्पताल ले जाना पड़ता है। असल को जो बीमारी है उसके कारण हर बार अस्पताल में मुझको कम से कम 5 घंटों तक रहना पड़ता है।
इस दौरान मैं पूरी तरह से उसके बेड के इर्द गिर्द की सफाई का ध्यान रखती हूँ। मेरी बेटी को परिस्थिति का आभास ही नहीं है, ऐसे में हो सकता है कि वह अपना हाथ मुंह पर या आंखों पर लगाए। अब अगर ऐसे में कोरोना से संक्रमित होती है तो आप कल्पना कीजिए कि मेरे लिए जिंदगी कितनी जटिल हो जाएगी। बहुत से विकलांग अपने स्वतंत्र जीवन के लिए किसी विकलांग केंद्र में रहने के बजाय घर में रहने को वरीयता देते हैं, हालांकि फिर भी उनको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। विकलांग केंद्रों में एक संभावना यह है कि देखभाल करने वाला ही कोरोना से संक्रमित हो जाए, ऐसे में उसके लिए क्वारंटीन होना जरूरी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित होती है।
विकलांगों के बारे में ये बहुत जरूरी है कि उन्हें इस बात का अवसर प्रदान किया जाए कि वे अपने भीतर छिपी योग्यताओं को निखार सकें। जब उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा तो ये काम संभव हो सकता है। जब किसी विकलांग के भीतर छिपी हुई योग्यताएं निखरेंगी तो उसका लाभ जहां पर उस व्यक्ति को होगा वहीं पर इससे पूरा समाज भी लाभान्वित होगा। बहुत से अवसरों पर यह देखा गया है कि किसी विकलांग ने किसी क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन किया जिसे पूरी शारीरिक क्षमता रखने वाले भी नहीं कर पाए। विकलांग समाज को सम्मान देने का एक तरीका यह है कि उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाए और यथासंभव उनकी जरूरतों की पूर्ति के प्रयास किए जाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विकलांगों को भी हम आम लोगों की ही तरह दूसरे से प्रेम और सम्मान की आशा रहती है।
कोरोना की वर्तमान स्थिति में विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान विकलांगों के साथ भेंट में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनसे मुलाकात के वक्त उन्हें बीमारी से डराना नहीं चाहिए। उनकी बीमारी की गंभीरता को समझने के बावजूद उन पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। इसका एक कारण यह है कि अपनी समस्याओं के कारण विकलांग पहले से ही तनावग्रस्त होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बीमारी के खतरों के बारे में बताता है तो वह अधिक तनावग्रस्त होने लगते हैं, जो उनके लिए किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
विकलांगों से किसी भी स्थिति में संपर्क में आने वालों को उन्हें बहुत ही सावधानी व प्रेम से उनकी बीमारी, विशेषकर कोरोना के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे वे घर के सदस्य हों या स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले या फिर मित्र आदि। साथ ही साथ कोरोना के कारण विकलांगों की सेवा करते वक्त स्वास्थ्य नियमों का पूरी गंभीरता के साथ पालन करना चाहिए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विकलांग दिवस के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि जनता ने दुश्मन के आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक युद्ध के मुकाबले में अच्छी तरह प्रतिरोध किया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने परमाणु समझौते में जो कुछ हासिल किया है उसके बारे में कभी भी दोबारा वार्ता नहीं करेंगे। भारत में किसान संगठनों और सरकार के बीच गुरुवार को हुई वार्ता में किसान नेताओं ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग दोहराई है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं, खुदा हाफिज।